जिसके पास इतना माल होता है कि वो जनरेटर ले सकते हैं, लेकिन जमीन में सड़ते हैं। बेवकूफी है कि नहीं भाई? माल का मकसद क्या है? राहत पहुंचाना। माल का मकसद ये कि हमें राहत मिले, और जो माल जिस रवाल से राहत ना मिला है वो तो बवाल है। यानी हम माल को पाल रहे हैं, होना ही चाहिए तो माल हमें राहत दे, जो मरने के बाद तो नहीं जाएगा। इसलिए अजी इतने ऐसे ऐसे लोग हैं मालदार जो जिनकी जनरेटर खरीद सकते हैं, रख सकते हैं, उसका खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं, फिर भी नहीं करते। नेमत जो दी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। नेमत के सवाल अल्लाह ताला को पसंद है। हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह युहिब्बु अन यरा अथर निअमतिही अला अब्दिही, कि अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाते हैं कि अपनी नेमत के असर को अपने बंदों के ऊपर देखे। जब मत इस्तेमाल करते हैं अल्लाह ताला खुश होते हैं। राहत क्यों नहीं लेता? मस्तों के स्वर टांगे फैलाकर, अब बताओ नींद में खराब। अच्छा फिर औरतें बिचारियां, मर तो चलो है, वो शलवार पहनकर कमीज उतार कर गली में चला गया, औरतें बिचारी क्या करेंगी? अगर वो ये नियत कर लें कि मैं अपनी माँ को, अपनी बीवी को, औरतों को राहत दूंगा, अजर नहीं मिलेगा कि अपनी औरतों को राहत पहुंचाना, अपनी बीवी का दिल खुश करने के लिए उसके लिए मरिंडा ले आया, उसके लिए आलू ले आके चिप्स ले आया, चाहे 5 रुपए के से दिल खुश करने के लिए, उस पर उसको अजर मिलेगा, दिल खुश कर रहा है वो। अगर राहत पहुंचाना है माल इसलिए कि हमें राहत पहुंचाए ना, इसलिए नहीं कि वो बाल है। अब देखिए ना, जिसको अल्लाह ने गुंजाइश दी हो तो वो आप गाड़ी में पेट्रोल पे चला सकते हैं तो पेट्रोल पे चला, क्यों जरूरत है इतनी लंबी लंबी लाइनें लगाने की? वक्त बहुत कीमती है, अगर माल खर्च करके वक्त बच जाए, यकीन जाने वक्त बहुत कीमती चीज है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा तशरीफ से जा रहे थे, एक जगह कब्र नजर आई तो आप वहां उतरे, कब्र के करीब एक जगह आपने जोरा का नमाज अदा फरमाई। साथियों ने पूछा कि हजरत की बात समझ में नहीं आई कि आपने जो है ये 2 रकात यहाँ नमाज पढ़ने क्या वजह है? फरमा बात यह है कि मुर्दा हसरत करता है, काश मेरे पास इतना वक्त हो कि मैं 2 रकात पढ़ लू। मुझे अल्लाह ताला ने आज जिंदगी दी, वह हयात है मेरी जान में, तो मैंने कहा कि मुर्दा तो हसरत करता है, मैं क्यों हसरत करूँ? दादा 2 रकात पढ़ ली। अल्लाह ताला माल दे, बड़ा वक्त भाई बहुत कीमती चीज है। लादा अगर माल देकर राहत मिल जाए ना, माल देकर राहत मिल जाए, बड़ा सस्ता सौदा है जनाब। राहत की बड़ी कीमत है, सुकून की। लादा अगर सुकून जाए सुपर मार्केट में जाकर, तो भाई चलो कराची जाएंगे, वहां से जो है वो 50,000 रुपए का सुकून लेकर आएंगे, मिल जाएगा बाजारों में। और बाद मरता हुआ 100 रुपए खर्च करके सुकून मिल जाए। इसलिए मसल मशहूर है ना कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। अच्छी चीज ले लेता है तो राहत, एक दफा तो रोता है फिर राहत रहती है, और सस्ता हर दूसरे दिन रोता रहता है यार क्या लेकर आ गया। इसलिए माल का मकसद है राहत पहुंचाना। जिस माल से राहत ना मिले, जो हमारी बेसुकूनी का जरिया बन जाए, वो माल तो बवाल है हमारे लिए। माल बड़ी नेमत है, लेकिन ये माल का नेमत कब है? जब इसका मंत्र सीख ले। और इसका मंत्र क्या है? इसका मंत्र है तकवा, यानी गुनाह से बचना, अल्लाह ताला का खौफ दिल में पैदा हो जाए। क्योंकि माल जो है अगर खौफ होगा तो अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं करेगा, और अगर खौफ है खुदा नहीं हुआ तो फिर नतीजा ये होगा कि कितना आदम, यानी कितनी अजीब बात है कि शादियों पर जो है लाखों रुपया खर्चा करें और मस्जिद मदरसे में 200 रुपये दे देते हैं, वो भी मर मर के, उसके लिए भी मस्जिद वाले जो चंदा थे उनके लिए आगे चादर चलाएं ताकि शेठ साहब उसमें कुछ 5 रुपए डाल दें। कितनी अजीब बात है। हालांकि होना ही चाहिए कि खैर के मौके खुद दे। अब देखिए एक मस्जिद है, एक मस्जिद का इंतजाम है, वहां पर मान लो 50 आदमी आते हैं, मिसाल ज्यादा ही होते हैं। अगर 50 आदमी की 100-100 रुपया दे दे, 5,000 रुपये तो ये हो गए, किसी की ज्यादा गुंजाइश है तो बोझ भी नहीं होगा और हल्का भी पड़ेगा। आजकल 100 रुपए की क्या कीमत है? जिनको ज्यादा गुंजाइश है वो 500 रुपए दे दे। भाई पंखा भी तो चलता ही है ना, हमारी वजह से पंखा बिजली चलता है, तो जिस मस्जिद में नमाज पढ़े कितना आसान हो गया, वो माल कितनी बड़ी नेमत। मस्जिद में, मदरसे में, अपनी राहत के लिए तो हम कितना माल खर्च करते हैं। नया मोबाइल लेना, नई गाड़ी लेनी हो, नया मकान, मकान पर लाखों रुपया खर्चा करना, लाखों रुपया, लेकिन अपने आखिरत के लिए कोई फिक्र नहीं है। इसलिए माल भूख का नेमत है कि जो अल्लाह की फरमाबरदारी में इस्तेमाल हो, इसलिए जरूरत है कि तकवा सीखे ताकि वो माल को अल्लाह की नेमत में इस्तेमाल करे। अब आप देखिए हमारे यहाँ जो है शादी पे लड़की के लिए जोड़े बनाए जाते हैं, आजकल तो कम से कम 50,000 रुपए का होता है, कम से कम बिल्कुल खास में भी ऐसा ही होता है रिवाज हो गया ना। अब बताइए एक रात का लिबास किसी पर काम करें, किसी काम करें, ज्यादा से ज्यादा वो दुल्हन जो है एक दो शादी अगर करीब में कोई आ जाए तो पहन लेती है, क्योंकि अगर शादी के बाद शोहर की कार्रवाई से कुछ उसके ढांचे में स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीली आ गई वो लिबास पहन नहीं सकती, और अगर बच्चा हो गया तो बच्चे तो और नहीं पहनने देते, फिर बच्चों को चुपते हैं वो कपड़े वो लिबास गया काम का, क्या फायदा हुआ इतना है। लेकिन बस हमारी अकलों पर ऐसा है, हम इस कानून को बदलने को तैयार नहीं है कि जी क्या करें दुनिया निभानी पड़ती है। और अजीब बात है कि कर्जा देकर, कर्जा देकर लाखों रुपया खर्चा हो रहा है लेकिन बदलने को तैयार नहीं। और यही है किसी के अब्बा मर जाए, वो हकीम मोहम्मद थानी रहमतुल्लाह ने सुना ना, एक साहब थे वो एक देहाती था हकीम के पास आया, आके रोने लगा हाथ जोड़ लगा, क्या बात, कहा मेरे अब्बा को बचा ले बस, बहुत बीमार है इस साल बचा ले, बंदे अगले साल मर जाए। अरे भाई क्यों, कहा वो इस साल चावलों की फसल अच्छी नहीं हुई, बिरादरी को चावल खिलाने पड़ेंगे, अगले साल फसल अच्छी होगी बल्ले मर जाए फिर खिला दूंगा। अब आप बताइए हमारा यही रिवाज है ना, आजकल जो तीसरे दिन है, अच्छा कुरान खानी करेंगे तीसरे दिन, क्यों जी हमारा रिवाज है तीसरे दिन, पहले तीन दिन अब्बा को जूते खाने दो, बड़ी दिक्कतें किए ना, फिर मैं देखा करते तो तीन दिन जूते खाने दो फिर ही सारे सवाब करेंगे। अब्बा को जरूरत अभी है, लिहाजा होना ये चाहिए कि कुरान पाक से सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने मुर्दे को मदद करो, लिहाजा मुर्दे को दफनाते ही कुरान पाक शुरू कर देना चाहिए, उसको फायदा होता है मुर्दे को। और आलम क्या होता है, मुर्दे को दफनाते ही सबको बिरयानी याद आती है, ये लो जल्दी खाओ, हम तुम्हारे अब्बा के पास आए ना मरने के लिए, दबा दिए ना जमीन में, चलो खाना खिलाओ, एहसान जताने के लिए आए, यानी कैसा अजीब रिवाज है। और फिर उसमें तीन दिन कोई नहीं फिक्र नहीं किसी को, तीसरे दिन अगर आप कुरान खानी करें कोई नहीं आएगा, और ऐलान कर दे भाई तीसरे दिन सिर्फ कुरान खानी होगी, सब आकर कुरान पाक पढ़ेंगे, कोई खाना वाना नहीं होगा, दिल पर हाथ रख के बताए कोई आएगा। और अगर ये ऐलान कर दे कि कुरान खानी नहीं होगी सिर्फ खाना होगा, फिर सब पहुंच जाए, यानी छुट्टी का दिन अगर आप कुरान खानी रखे कोई नहीं आएगा। आपको पता है साहब बच्चों एक ही दिन होता है, बच्चे कहते हैं अबू जरा हमें पार्क ले जाए, जरा हमें नानी के घर ले जाए घुमाने, और अगर काम वाले दिन आप खाना रख दे फिर देखो कोई माई के लाल छुट्टी तो करके दिखा, तो मतलब क्या हो लोगों को खाने से मतलब भाई खाना मना क्या क्या शरीयत, लेकिन इन चीजों के नाम पर खाने खाना, वो बेचारा वो जो आलम ही होता है कि वो जो मुर्दा के घर वाले हैं उनको फिक्र होती है खाना किससे पकवाना है, यार अन्नू भाई से पकवाओ, क्योंकि उसका यार खाना बड़ा मजेदार होता है, बकरा कहाँ से लाएंगे, बब्बन भाई से लेके आना है क्योंकि उनका गोश्त बहुत अच्छा होता है, और देखो यार तेरा बुढ़े बकरे का ना लाना जवान का लाना, क्योंकि वो चचा मियां है ना उनको वो पता है ना, वो अगर पिछली दवा भी कितनी बातें बनाई थी, अबे यार क्या बकरा ले आए थे, चुंगम की तरह चबाते चबाते बोटिया ही वो नहीं हो रही थी। और देखो अनु भाई को खास कहते ना कि तेल ज्यादा ना डाले, क्योंकि खालू जाना है ना उनका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, और नमक भी मोतदिल डाले, ये क्या हो रहा है, ये अब्बा की वलीमा की तैयारी है। हाँ अब्बा का वलीमा ही होता है ना वो तो पूरा, क्योंकि औरतें भी तो बड़ी ठंड के आती है, और फिर मीठा भी जरूरी, यानी अजीब बात है, तो वलीमा ही तो हुआ और क्या हुआ, फर्क ये है कि अब जो अब्बा का वलीमा हो रहा है उसमें अब्बा नहीं है, और जब अब्बा ने वलीमा किया था उस वक्त मुन्ने नहीं थे। फर्क हुआ ना, तो वलीमा दोनों तरफ से, जब अब्बा ने वलीमा किया तो मुन्ने नहीं थे, आज मुन्ने वलीमा कर रहे तो अब्बा नहीं है। लेकिन बात वही आती है आपसे कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांध रहे, तो मेरे प्यारे दोस्तों बात ये है कि इन कामों के लिए आसमान से कोई नहीं आएगा, हम ही लोगों को से करना होगा, हमें ये कदम कहते हैं बोल्ड स्टेप उठाना होगा, ये कदम उठाना होगा, हिम्मत करनी होगी, आसमान से कोई नहीं आएगा, और हमें हिम्मत करनी होगी। हकीम मोहम्मद क्या एक शख्स था, तो बड़े जागीरदार का बेटा, जमींदार का बेटा, उसके बाप का इंतकाल हो गया। उसने बहुत उम्दा खाना पकाया, पूरी बिरादरी को बिठाया और सबके सामने खाना लगा दिया। अभी बिस्मिल्लाह भाई साहब एक बात सुन लीजिए, एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरे अब्बा मर गए हैं, मुझे गम है, मुझे गम लगा है मेरा बाप मर गया है, और तुम लोग खाने पे तरह टूटे पड़ते। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये खाना मैं एक आपको खिलाऊं या मैं गरीबों को खिलाऊं, क्या किस में मेरे बाप को फायदा होगा? तो गरीबों को खिलाने में फायदा होगा, आपको खिलाने में तो कोई फायदा नहीं, हमें कोई फायदा नहीं। अच्छा ठीक है आप खाना खाइए। अब उसने कहा आप खाना खाइए, सबके मुंह इतनी बेगैरती कौन बर्दाश्त करेगा। उसने कहा यार ये बेगैरती की क्या जरूरत थी, इस तरह का हमें नहीं खाना खाना, भेज दो उधर। तो किसी ने कहा यार तुम्हें इस तरह एक ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? कहा ड्रामा इसलिए क्या, अगर मैं कहता कि मैं खाना नहीं खिलाऊंगा, तुम कहते देखो इसको अपने बाप के मरने का गम नहीं है, मरने के गम की खुशी नहीं है। तो मरने की गम की खुशी ये आपने पहली दफा सुनी होगी सर,
खुशी
और क्या होता ही क्या है, वही है ना, कमा ना कम मैं मिल रहा है। तो बात यही है कि अब वो जो है वो क्या, अगर मैं खाना ना पका तुम कहते कंजूस हो, अब मैंने खाना सामने दिया कि खाना बढ़िया है, तुम्हें खाने का कोई फायदा नहीं, इससे बेहतर था गरीबों को खिला दो। अच्छा भाई फिर इस तरह खानदान में खत्म ही हो गई, हिम्मत करने की जरूरत है भाई। पूछे भाई किसको, बड़े हैं बैठे हैं सब करें, काम ये काम हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि इस तरह खाना लगा के फिर लोगों को, आजकल लोग इतने बेशरम है फिर भी खाते, आजकल वो सिस्टम खत्म हो गया। मालूम है कि वो बेचारा कब्जा लेकर अपनी बेटी की शादी कर रहा है, लेकिन फिर भी दादी कोई नहीं छोड़ रहा। मालूम है कि इनके घर के हालात अच्छे नहीं है, ये खाना नहीं खिला सकता, फिर भी उसको लाजमी खाना खिलाना है, चाहे कब्जा ले मरे कुछ भी करे। और एक बरादरी वाला कभी ये भी नहीं पूछता गलती से, भाई आपका कब्जा कितना है, मेरे गले पड़ गया तो मुझसे कब्जा मांग ले, ये आलम अफसोस की बात है। अरे ऐसी जालिमाना रिवाज है कि गरीब बेचारा गरीब से गरीब तरह होता चला जाता है। मुंतकिल करके काम करो, जरा कुछ देर कमर से कमर में दर्द हो रहा है।